हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 348। आदित्य ने उसके सवाल पर थोड़ा सोचने के बाद थोड़ी तेज आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल, तुम भूल गई हो। इतने महीने, हमारी इतने महीनों की शादी, हमारा रिश्ता, हमारी फीलिंग, सब कुछ तो भूल गई हो। इसीलिए तो इस तरह से सवाल कर रही हो, जैसे कि हमारी शादी की शुरुआत के समय करती थी। उसकी बातें सुनकर सुनैना का कन्फ्यूजन और बढ़ गया। उसने अपने मन की बातें उसके सामने रखीं। शुरुआत के टाइम पर करती थी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अभी एक महीना ही तो हुआ है हमारी शादी को, क्या तुम्हारे लिए ये शुरुआत का टाइम नहीं होता? और मैं जो भी पूछ रही हूँ उसके बजाय तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? मुझे प्लीज कन्फ्यूज मत करो, मेरा सिर सच में दुख रहा है। उसके सिर में पहले से ही दर्द हो रहा था और आदित्य की बातें सुनकर ये दर्द और भी बढ़ गया, जिसे अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगी। इस बारे में सोचते हुए उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डाला तो उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और वो लगभग होश खोने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने आकर उसे थाम लिया। वो जमीन पर गिरने की बजाय उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। आदित्य की तेज आवाज और वहां की खटपट की आवाज सुनकर स्वीटी भागती हुई वहां आई और बोली, क्या हुआ भैया, आप इतनी तेज आवाज में चिल्ला? लेकिन वो अपना सवाल पूरा करने से पहले ही उसकी नज़र आदित्य के हाथों में बेहोश पड़ी सुनैना पर पड़ी। अनय भी वहां की सिचुएशन और दोनों की बातें सुनकर खासा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन सुनैना को बेहोश होते देख वो तुरंत ही आदित्य की मदद के लिए आगे आया। अनय की तरफ आते हुए अनय चिंता से बोला, क्या हुआ यार आदि, तू इस तरह से क्यों चिल्ला रहा था भाभी पर? तुझे तो अच्छी तरह से पता है उनकी हालत, लेकिन फिर भी? अनय की लात सुनकर स्वीटी भी परेशान होते हुए पूछती है, भैया क्या हुआ क्या हुआ? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी और अब इस तरह से बेहोश, और आप चिल्ला क्यों रहे थे उन पर, ऐसा क्या हो गया? उन दोनों के सवाल और सुनैना की हालत देखकर आदित्य बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोला, मेरी गलती है, हाँ सब मेरी ही गलती है, मुझे पता नहीं क्यों खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। वैसे सच कहूँ तो सुबह से मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की खुद को, और ये सब कुछ समझने की भी, लेकिन सुनैना ऐसा बिहेव कर रही कि जैसे कि वो 8 महीने पीछे चली गई हो। हमारी नई नई शादी के टाइम पर जैसे वो मुझसे बात करती थी, बिल्कुल वैसे ही। स्वीटी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने हम सबके साथ लंच किया और कितनी अच्छी तरह से बात कर रही थी, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य एकदम क्लूलेस था इस बारे में। उसने उसी तरह से कहा, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर अनय ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, एक मिनट आदि, क्या कहा तूने? कैसा बिहेव कर रही थी भाभी, मेमोरी लॉस के जैसा? आदित्य ने सुनैना को संभाला और स्वीटी से पानी लाने के लिए कहा, फिर अनय के सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन पूरी तरह से नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की, या फिर पता नहीं उसे क्या लग रहा था, ये तो वही जाने, लेकिन जब से वो सोकर उठी है तब से ही इतने सवाल कर रही थी मुझसे, और भी बहुत कुछ बोला उसने, इसके अलावा उसने तुम दोनों को भी नहीं पहचाना। स्वीटी पानी लेकर आई। आदित्य ने उसके हाथ से पानी लेकर तुरंत ही सुनैना के चेहरे पर छींटे डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सुनैना होश में नहीं आई। ये सब बोलते हुए आदित्य बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी अनय ने उसे सहारा देते हुए कहा, चलो हम अभी भाभी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ है। आदित्य तुरंत ही अनय की बात मान गया। फिर उसने स्वीटी की तरफ देखकर कहा, हाँ ये ठीक है चलो, और स्वीटी तुम यहीं रुकना घर पर, सुनैना के किसी भी सामान की जरूरत पड़ी तो मैं ड्राइवर या फिर रवि को भेजूंगा, तुम उसे वो सामान दे देना, मेडिसिन या जो कुछ भी। स्वीटी तुरंत ही उसकी बात मानते हुए अपना सिर हिलाती हुई बोली, हाँ ठीक है भाई, आप जल्दी से भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ, और मेरे नंबर पर या घर के नंबर पर कॉल कर लेना आप। सुनैना के लिए इस वक्त वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिलहाल उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए आदित्य ने बेहोश सुनैना को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर निकल गया। अनय थोड़े तेज कदमों से चलता हुआ आदित्य से पहले ही उसके घर के बाहर आ गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और फिर अपनी कार वहीं छोड़कर वो आदित्य के साथ उसकी कार में ही बैठ गया। अनय आगे ड्राइवर के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठा था तो आदित्य पीछे सुनैना का सिर अपनी गोद में रखे हुए पिछली सीट पर बैठा था। वो बेहोश सुनैना को काफी इमोशनल होकर देख रहा था और उसके सिर पर हाथ भी फेर रहा था। बेहोश सुनैना की तरफ देखकर आदित्य ने अपने मन में कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनैना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता, तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ अपने आदि के पास। ये सब सोचते हुए आदित्य की आंखों में आंसू थे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे अनय ने पीछे मुड़कर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य प्लीज हिम्मत रखो, इस तरह से रोगे तो फिर भाभी का ध्यान कौन रखेगा? आदित्य ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, बट गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाओ, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। आदित्य की बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी और तेज कर दी। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में चलती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ मनस्वी का VIP होटल रूम। मनस्वी अपनी ज्यादातर क्लाइंट मीटिंग और इम्पोर्टेंट प्लानिंग यहीं पर करती है। इस वक्त वो अपने बड़े से सिंगल काउच पर लेग क्रॉस करके बैठी हुई थी और सामने बैठे अधेड़ उम्र के आदमी को ध्यान से देख रही थी। उसके पीछे एक लड़की दोनों हाथ बांधकर चुपचाप खड़ी थी। सामने बैठे उस आदमी ने कहा,
मनस्वी बेटा, इतना क्या सोच रही हो? मैं बस तुमसे हेल्प ही तो मांग रहा हूँ, और वैसे भी तुम अपने अंकल की हेल्प तो करोगी ही ना, और तुम्हारा भाई गायब है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? उसकी बात सुनकर मनस्वी सोचने की एक्टिंग करती हुई बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि आप लास्ट टाइम मेरे पास कब आए थे। हाँ, याद आया, जब आपको अपनी वाइफ की सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखनी थी मेरे होटल के पार्टी लाउंज में, और उससे पहले, हाँ, एक क्लाइंट मीटिंग के लिए रूम चाहिए था फ्री में, और उससे पहले भी, हाँ, ऑलमोस्ट हमेशा जब आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है बस तभी आप नजर आते हैं डियर अंकल। मनस्वी की ये बात सुनकर उसके सामने बैठे उस आदमी ने भी बुरा सा मुंह बनाया। वो आदमी कोई और नहीं, विराज के पिता मिस्टर सहगल थे, और मनस्वी के रिलेशन में दूर के अंकल भी लगते हैं। पहले तो वो उन लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, लेकिन जब से मनस्वी और उसकी कंपनी का नाम इतना ज्यादा हुआ है तब से उन्हें अपनी रिश्तेदारी याद आ गई है। मनस्वी के ताने भरी बातें सुनकर मिस्टर सहगल को काफी बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिलहाल उन्हें अपना काम निकलवाना था और उन्हें मनस्वी से मदद चाहिए थी, इसीलिए वो बात संभालते हुए बोले, जो हो गया सो हो गया मनस्वी बेटा, और आखिर अपने होते ही किस दिन के लिए हैं? मैंने तुमसे थोड़ी बहुत मदद ले ली तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? और वैसे भी जब तुम चाहोगी मैं भी तो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा ना।
उनकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मनस्वी अपनी आईज रोल करती हुई बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा टाइम तो कभी नहीं आने वाला कि मुझे मदद मांगने के लिए आपसे किसी के भी पास आना पड़े, और दूसरी बात, मैं सच में विराज को अपना छोटा भाई मानती थी, लेकिन जो कुछ भी उसने किया है उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो इतनी आसानी से आप लोगों को मिले, उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मनस्वी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी मिस्टर सहगल ने काफी आराम से कहा, अच्छा ठीक है, विराज ने, चलो माना उसने गलतियां की हैं, लेकिन वो सुधारी भी तो जा सकती हैं, और उसके लिए ना सही, लेकिन मेरी वाइफ अनिता, वो भी कल शाम से गायब है, और उसने कहा था कि उसे विराज का पता चल गया है और वो वहां पर ही कहीं जा रही है, और तब से वो भी वापस नहीं आई। कम से कम उसे ढूंढने में ही मेरी मदद कर दो, क्योंकि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है ना। इस बार मनस्वी थोड़ा चौंकते हुए बोली, क्या अनिता आंटी, वो भी गायब है, और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? तो आपने पुलिस कंप्लेन किया या नहीं, और किस जगह पर जा रही थी वो, कुछ भी बताया था क्या उन्होंने आपको? मनस्वी के सवाल का जवाब देते हुए वो एकदम रिक्वेस्ट करने वाले लहजे में बोले, नहीं, अगर मुझे ऐसा कुछ भी पता होता तो मैं खुद ही जाकर उस जगह पर ढूंढ लेता, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, और इस शहर में मेरी इतनी जान पहचान नहीं है, अभी 3-4 साल पहले ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तुम्हारी कम टाइम में यहाँ पर ज्यादा अच्छी जान पहचान है, और इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, बस आखिरी बार, इस बार तुम मेरी मदद कर दो मेरी पत्नी और बेटे को ढूंढने में, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ये सब बोलते हुए सामने बैठा वो आदमी लगभग रुआंसा हो गया और मनस्वी के सामने हाथ जोड़ने लगा। मनस्वी ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखती हूँ, और विराज के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अनिता आंटी को मैं ज़रूर ढूंढ निकालूंगी अगले 24 घंटे में, ये मेरा आपसे वादा है। इस बात पर वो थोड़ी राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक यू सो मच मनस्वी बेटा, मुझे पता था तुम अपने अंकल की मदद ज़रूर करोगी, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मनस्वी एकदम सीरियस लुक देते हुए बोली, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, फिलहाल आप बस मुझे आंटी का फ़ोन नंबर और फ़ोटो भेज दीजिए, और 24 घंटे के लिए बस शांत रहिए, इस तरह से जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब मैं हैंडल कर दूंगी। मिस्टर सहगल वहां से जाते हुए बोले, ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पता नहीं कहां पर होगी अनिता और मेरा बेटा विराज। इतना बोलते हुए मिस्टर सहगल वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ याद आया और वो वहां पर रुक गए। पीछे मुड़कर मनस्वी की तरफ देखते हुए बोले, वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि विराज ने आखिर ऐसा क्या गलत काम किया है जिसकी वजह से तुम उससे इतनी ज्यादा नाराज हो? क्रमशः क्या मनस्वी बताएगी मिस्टर सहगल को विराज के करतूतों के बारे में, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, और क्यों कर रही है वो उनकी इतनी मदद?